Tamam Şanti. Ek. Kavita he. ये कविता जब हम नौवीं कक्षा में थे तब इंग्लिश जो विषय है उसकी एक बुक में थी उसका ये हिंदी अनुवाद है। कवि कहता है मुझे वह रात याद है जब मेरी माँ को बिच्छू ने डंक मारा था। कविता का शीर्षक है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, मतलब एक बिच्छू की रात। वो कहता है कि मुझे वह रात याद है जब मेरी माँ को बिच्छू ने डंक मारा था। 10 घंटों की लगातार बारिश ने उसे मजबूर कर दिया था कि वह चावल की बोरियों के नीचे छिप जाए। बिच्छू, बाहर बारिश चालू थी और मेरी माँ को बिच्छू ने डंक मारा। उसने अपना विष छोड़ते हुए अंधेरे कमरे में अपनी शैतानी पूंछ की एक चमक दिखाई और फिर वह बारिश का सामना करते हुए बाहर भाग गया। बिच्छू, गांव के लोग मक्खियों के झुंड की तरह आ गए और ईश्वर का नाम 100 बार दोहराने लगे ताकि उस दुष्ट बिच्छू की शक्ति निष्क्रिय हो जाए। घटना गांव की है, छोटा सा घर है और मेरी माँ को बिच्छू ने काटा और जैसे ये घटना हुई गांव के सारे लोग आ गए। बाहर बारिश चालू थी, मोमबत्तियां और लालटेन लेकर जो मिट्टी की दीवारों पर बिच्छू की विशाल छाया डाल रही थी वे उसे ढूंढने लगे पर वो नहीं मिला। गांव के लोग आए और वो सारे बिच्छू को ढूंढने लगे। बाहर बारिश चालू थी, अंधेरा था। वे अपनी जीभ से तुत्कार करते हुए बोले, बिच्छू का हर हिलना डुलना माँ के रक्त में उसके जहर को और फैला देता है। अगर बिच्छू हिल रहा है अर्थात माँ के शरीर में जहर फैल रहा है, ये गांव की मान्यताएं हैं। इसलिए सबने कहा कि उसको हिलने नहीं देना है। वे कहने लगे, वह वही स्थिर बैठा रहे। किसी ने कहा, तेरे पिछले जन्मों के सारे पाप आज की रात जल जाए। किसी ने कहा, यह जो बिच्छू ने काटा क्यों काटा, क्योंकि पिछले जन्मों का कोई पाप है। उन्होंने कहा, तेरा यह दुख तेरे अगले जन्म की दुर्भाग्य की घड़ी को कम कर दे। उन्होंने प्रार्थना की, इस माया जगत में अच्छाई और बुराई का जो संतुलन है वह तेरे दुख के कारण बुराई की ओर और थोड़ा कम हो जाए। अलग अलग तर्क देने लगे गांव वाले। उन्होंने कहा, यह जहर तेरे शरीर को इच्छाओं से, वासनाओं से, अभिलाषाओं से मुक्त करेगा। और वो सब माँ के चारों ओर जमीन पर बैठ गए। हर चेहरे पर समझदारी थी। क्या थी समझदारी? कौन सी समझदारी? और स्वीकार का एक शांत भाव था। और भी मोमबत्तियां, और भी लालटेन, और भी पड़ोसी, और भी किट, और बाहर लगातार बरसती बारिश। मेरी माँ चटाई पर दर्द से तड़प रही थी, करा रही थी। मेरे पिता जो संशयी और तर्कवादी थे हर उपाय आजमा रहे थे, मंत्र से लेकर औषधि तक, जड़ी बूटी से लेकर रासायनिक मिश्रण तक। उन्होंने माँ के डसे हुए पैर के अंगूठे पर थोड़ा मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा दी। मैंने देखा वह लौ मेरी माँ के शरीर पर जल रही थी। मैंने एक साधु को देखा जो किसी मंत्र से जहर को वश में करने के लिए अपने अनुष्ठान पूरा कर रहा था। वो अपने माँ के अपने पिता के बारे में कह रहा है कि मेरे पिता क्या कर रहे थे, अलग अलग अनुष्ठान कर रहे थे। मेरी माँ जमीन पर थी, तड़प रही थी, गांव के लोग अलग अलग तर्क दे रहे थे, फिर मोम डाली और आग लगाई। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। 20 घंटे के बाद उस डंक की पीड़ा समाप्त हो गई। मेरी माँ ने बस इतना ही कहा, भगवान का शुक्र है बिच्छू ने मुझे डंक मारा, मेरे बच्चों को नहीं। ये बड़ी प्रसिद्ध कविता है जिसमें अंधश्रद्धा, गांव के लोग, उनकी भावनाएं, और उसके साथ साथ ही एक माँ का हृदय। माँ ने क्या कहा कि अच्छा हुआ बिच्छू ने मुझे डंक मारा और मेरे बच्चों को नहीं। करुणा, प्रेम, वात्सल्य, ये एक ऐसे गुण है जो एक स्त्री हृदय में भरपूर होते हैं। ये कितना सौभाग्य है इस संसार की सभी माताओं का कि भगवान जब धरा पर आया तो उसने उनको चुना, ज्ञान का कलश उनके सिर पर रखा, उनको आगे बढ़ाया। इस समाज ने क्या किया स्त्रियों के साथ, यदि सारे इतिहास को हम देखें तो कितनी सारी घटनाएं हैं जो आप सब जानते हैं। तो ऐसे समाज में आकर उसने सबको ऊंचा उठाया। तो ये हम सब के जीवन का बहुत बड़ा भाग्य है और विशेष आप सब के जीवन का कि भगवान हमें मिल गया। परमात्मा मिलन के बाद एक चीज होनी चाहिए और वो है परिवर्तन। बाबा मिलन के बाद एक चीज होनी चाहिए, वो है हमारे भीतर एक सूक्ष्म हलचल कि जहां हम थे वहां से उसने हमें कहां पहुंचा दिया और अब हमें क्या करना है। तो आप सब यहां आए और प्रकृति के सानिध्य में ये भट्टी यहां चल रही है, सभी भट्टियों का एक ही लक्ष्य होता है, स्वयं को गहराई से जानना, अपने आप को समझना, काल चक्र को समझना कि जो कुछ हमारे जीवन में चल रहा है वो कैसे चल रहा है, क्या सब कुछ ठीक है। हमने भगवान को पाया पर ऐसा तो नहीं कि उसे पाकर भी वो अनपाया सा है। हमने भगवान से मिलन मनाया पर ऐसा तो नहीं उससे मिलकर भी हम अनमिले से हैं। तो आत्मचिंतन के लिए बहुत अच्छा अवसर है ये मौन, एकांत, प्रकृति, तो सभी एक मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और चिड़ियों की जो आवाजें सुनाई दे रही है सारा ध्यान उन आवाजों की तरफ केंद्रित करेंगे। एक भी आवाज छूटने न पाए। उन आवाजों से एक रूप हो जाना है। इन आवाजों में कैसी निर्विकारिता है, आवाजों में कैसा मौन है, कैसा दिव्य संगीत। मन शांत, अब धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपने श्वास की तरफ, श्वास आ रहा है जा रहा है, साक्षी होकर अपने श्वास को देखना है। वापस सारा ध्यान पक्षियों की आवाज की तरफ, फिर से अपना ध्यान श्वास की तरफ, आंखें खोलेंगे। प्रकृति निर्विकार है, मौन है, और जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो स्वयं से जुड़ते हैं। प्रकृति निर्विकार है, प्रकृति मौन है, और प्रकृति की ये निर्विकारिता हमें उस परम सत्ता की ओर भी ले जाती है, जो संपूर्ण निर्विकारिता का सागर है, जो मौन का महासागर है। इसलिए यहां से जाने के बाद एक कार्य जो सबको करना है वो प्रकृति के साथ क्या करेंगे, जुड़ेंगे। सबको पसंद है प्रकृति, तो रोज कोई गार्डन हो, छत हो, कोई नदी, कोई किनारा, पहाड़, झरना, जहां वायु बहुत शुद्ध है, ऐसे निर्विकार स्थानों पर जाना है। जो लोग माउंट आबू में 30-40 साल से रह रहे हैं वो कहते हैं हमने अब तक पूरा माउंट आबू नहीं देखा, इतना बड़ा है, इतनी सारी गुफाएं हैं, इतने सारे स्थान हैं, और कुछ कुछ ऐसे ऐसे स्थान हैं यहाँ पर कि जहां पर मनुष्यों की जरा आवाज नहीं है, पूर्ण शुद्ध प्रकृति। और ऐसे स्थानों पर जब हम जाते हैं, एक तो शुद्ध हवा, दूसरा मौन, मन अपने आप शांत होने लगता है, स्थिर होने लगता है। ऐसे स्थानों पर जाकर योग करना या मुरली पढ़ना एक अपने आप में सुंदर अनुभव है। तो आप जहां भी रहते हैं, यहां से जाने के बाद रोज कम से कम आधा घंटा या एक घंटा एकांत में, कोई गार्डन है वहां जाके बैठे। एक है मुरली को पढ़ना बंद कमरे में, एक है चिंतन करना बंद कमरे में, और एक है खुली हवा में। जैसे ही खुली हवा में जाते हमारा चिंतन और मन फैलता है। ऐसे ऐसे बिंदु हमें स्पर्श होते हैं, टच करते हैं, जिनके विषय में हमने सोचा ही नहीं था। तो सब करेंगे रोज टाइम निकाल के, अगर दो लोग जाते हैं तो मौन में। अध्यात्म की सबसे बड़ी शक्ति बोल नहीं है, भाषण नहीं है, मौन है। तो रोज की दिनचर्या में कुछ समय मौन का निकलना है, साइलेंस। जितना गहरा हमारा मौन होगा उतना शांत हमारा मन होगा। और यदि सुबह से लेकर रात तक हम केवल बोलते ही रहे तो कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा एनर्जी क्या होती है, वेस्ट होती है। इसलिए मौन का अभ्यास करना है। महात्मा गांधी जब अफ्रीका में थे तो एक मठ में वो गए, उसको ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री कहते थे। उस आश्रम का ये नियम था कि वहां पर जितने लोग रहते थे वो सभी मौन धारण किए हुए थे। उन्होंने वहां के जो मठाध्यक्ष थे, इंचार्ज, उससे मुलाकात की और पूछा कि आपके आश्रम में कैसा नियम है, यहां के निवासी बोलते ही नहीं। उस आश्रम के जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि हमारे आश्रम का नियम है। और उन्होंने कहा मनुष्य जो है इतना उतावला है और वो जितना कुछ बोलता है उसमें से अधिकतर व्यर्थ ही होता है, या जो बोलता है या उसको अतिशयोक्ति करता है, बड़ा चढ़ाकर बोलता है, या फिर उसको दबाता है, या फिर उसका स्वरूप बदल देता है, कुछ छिपाता है। और यदि हम बोलते ही रहे तो हमारे भीतर एक सूक्ष्म आवाज है, उस आवाज को हम कभी नहीं सुन सकेंगे। इसलिए इस आश्रम का नियम है कि जो भी यहाँ आता है और जब तक यहाँ रहता है उसे मौन का पालन करना होता है। एक है मौन और दूसरा एक मौन है आर्य मौन। आर्य मौन अर्थात संपूर्ण मौन, जिसमें यहां तक हम आंखों से भी संवाद नहीं करते दूसरों से, नजर नीचे। तो तीसरा एक धारणा जो है, जो अपने जीवन में लानी है, वो है नजर नीचे। जितनी हमारी आंखें सब कुछ देखती रहती है, क्या करती है, उसका इंटरप्रिटेशन करती है, किसी बहन को देखा, किसी भाई को देखा, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसके साथ हमारा ये अनुभव है, सब गणित चालू हो जाता है। हाँ, ऐसा भी नहीं कि हम आंखें बंद करके चले या कोई हमें विश करे तो हम ना करें, पर जितना हो सके ये अभ्यास नजर नीचे, इसको कहते हैं डाउनकास्ट आइज। जितनी हमारी आंखें खुली और हम देखते रहते हैं चीजों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को, हमारा मन सोचने लगता है, हमारी ऊर्जा बहती है आंखों से। हम लोगों ने यह अभ्यास बहुत किया है, नक्की देखा है ना सबने, तो शाम के समय हम देखते हैं कुछ कुछ मधुबन के भाई है, हमेशा उनको देखा है, उनकी नजर नीचे रहती है, पूरा राउंड लगाते हैं, वहां सारे टूरिस्ट घूमते रहते हैं, लोग घूमते रहते हैं। यदि हम सबको देखते रहे तो सारी एनर्जी जाती है। इसलिए पहला रूल प्रकृति का सानिध्य, दूसरा मौन, और तीसरा नजर नीचे। इसका अभ्यास करना एक दिन में तो नहीं आता है, धीरे धीरे। और जैसे आप लोगों ने यहां भट्टी की, वहां जाकर अपनी भट्टी लगानी है, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, जिस भी वातावरण में है वहीं पर, और उसका विषय किसी को नहीं बताना है, उसको गुप्त रखना है कि ये मेरी कैसी भट्टी है, अकेले की भट्टी है। ये कैसी थी, सार्वजनिक, सब थे, वहां जाने के बाद अकेले की। और उस भट्टी में कुछ पढ़ना है, कुछ नए प्रयोग करने हैं, कुछ ना कुछ नया करना है। यदि जीवन में नवीनता नहीं तो क्या हो जाता है, बोर हो जाते, वही वही मुरली, वही वही सेंटर, वही वही सब कुछ। इसलिए कुछ तो नया करना है, कोई नई सेवा करनी है। जैसे हॉस्पिटल में कई लोग आते हैं, चुपचाप सबको फल देकर चले जाते, वो ये नहीं बताते वो कौन थे। पेशेंट को हम पूछते हैं फल कहाँ से आया, वो कहते हैं कोई आया देकर चला गया, किसने दिया पता नहीं, चुपचाप, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं। ज्ञान का सबसे बड़ा नुकसान एक है कि जितना ज्ञान बढ़ता है उतना क्या बढ़ता है, अहंकार। बाकी सभी चीजें छोड़ सकते हैं परंतु ज्ञान का अहंकार चमड़ी की तरह है। बाकी व्यक्ति सब कुछ दे देगा, छोड़ देगा, त्याग कर देगा, पर इसको नहीं छोड़ पाता। इसलिए कहा स्वयं के मन को समझना है गहराई से, अपने आप को ही समझना है कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। यदि हमारा बोलना ही हमारे डिस्टर्बेंस का कारण है तो उसको कुछ दिन के लिए क्या करना है, रोकना है, कम कर देना है। संगम युग की सबसे बड़ी बीमारी है बातचीत। दो व्यक्ति बैठ के क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। हाँ, अगर वो चर्चा ज्ञान की है, साधना की है, तो दोनों की उन्नति होगी। परंतु वो चर्चा यदि व्यर्थ की है, इसने क्या किया और उसने क्या किया, तो दोनों ही नीचे जाएंगे। इसलिए एक और काम करना है, अगर कर सके तो अपना एक ग्रुप बनाना है, एक दो लोगों का, तीन लोगों का, चार लोगों का, पांच लोगों का। उसमें क्या करेंगे, बैठकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि मुरली में यह आया है इसका क्या अर्थ है, मुरली में यह शब्द आया है इसका क्या अर्थ है। जब दो लोग मिलकर सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, तो वो विषय क्या होता है, और स्पष्ट होता है, खुलता है। कर सकते हैं ये, या रविवार को, हर रविवार घर में ही कर सकते हैं, या किसी और स्थान पर कर सकते हैं, जहां भी कर सके, क्योंकि ये कार्य बड़ा आवश्यक है। यह ज्ञान जो है बहुत सूक्ष्म है, इतना इतना वो आसान नहीं है जितना हमने उसको समझा है। इसके लिए क्या चाहिए, रोज रोज चर्चा, रोज रोज डिस्कशन, ताकि क्या हो जाए, नई नई पॉइंट्स हमको पता चले, नए नए योग के प्रयोग हमको पता चले। जैसे हम हमेशा बताते एक माता का उदाहरण, पांडव भवन में आती थी, उसको न पढ़ना आता है न लिखना आता है, हम लोगों का क्लास होता है उसमें वो आके बैठती थी, और उसको पूछा तुम योग कैसे करती हो, क्योंकि सुबह सुबह दिखती है वो रोज 2 बजे बाबा की कुटिया में, ना उसको मुरली पढ़ना तो आता है, नहीं लिखना भी नहीं आता है। तो उसने कहा, उसको पूछा तुम योग कैसे करती हो, उसने कहा मुझे योग भी कुछ नहीं आता है, मैं क्या करती हूँ, ऐसी आत्मा को यहाँ से निकालती हूँ और ऐसी बाबा के सामने रखती हूँ और बाबा को कहती हूँ जो करना है करो। कैसी टेक्निक है ये? तो सभी करेंगे, निकालो यहां से, निकालो, ऐसे निकालो, जोर से निकाली, अब सामने रखो, बाबा को बोलो बाबा इसके साथ तुमको जो करना है वो कर लो। बोल दिया तो ये कैसा योग है? जबरदस्त है कि नहीं? भगवान क्या देखता है? प्रार्थनाएं देखता है। भगवान क्या देखता है? जैसे किताबों में लिखी है वैसी कमेंट्री की, यह सब नहीं देखता है। वो क्या देखता है? भाव को देखता है, भावना को देखता है, हृदय को देखता है। कितनी सच्चाई है किसमें? शब्दों को नहीं देखता है, शब्द कितने स्पष्ट है, उच्चारण कैसे है, यह सब उसे नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? भाव, भावनाएं, हृदय, निर्मल मन उसको चाहिए। तो नित योग के क्या करने हैं? नए नए प्रयोग। तो कौन सी बात बताई थी? चर्चा। क्या करनी है? ज्ञान की चर्चा करनी है, डिस्कस करना है दो मिलके। दो लोग बैठे और डिस्कस करो, कोई भी पॉइंट ले लो कहीं से भी और उसके विषय में सोचो कि तुमको क्या लगता है इसके विषय में। क्योंकि हर व्यक्ति का चिंतन अलग है, हर व्यक्ति हमारा शिक्षक है। हर व्यक्ति, छोटा सा बच्चा भी आ जाए उससे भी हम कितना कुछ सीख सकते हैं, छोटी सी कन्या आ जाए उससे हम कितना कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि हमें क्या पता ये पिछले जन्म में क्या था, कौन था, कौन से संस्कार लेकर आ रहा है, कितनी उसमें निर्विकारिता होगी, कितनी पवित्रता होगी, हमें नहीं पता ना। इसलिए भाव क्या रखना है? मुझे सबसे सीखना है। निर्वर भाई साहब ने एक बार कहा था मधुबन में, जब वो लोग थे तो उस समय 400 लोग रहते थे मधुबन में, तो उन्होंने कहा था कि मेरे 400 गुरु है, जितने लोग उतने मेरे कौन है, सब गुरु है, मैं सबसे सीखता हूं, क्योंकि हर एक के पास कुछ तो है नया। हमें याद है जब हम नए नए आए थे बहुत, तो एक भाई थे, तो देखा था कि वो डॉक्टर थे, उस समय पेशेंट के साथ ठीक से बात नहीं करते थे, डांटते थे बहुत जोरदार पेशेंट को, तो हमारे मन में उनके प्रति थोड़े भाव ठीक नहीं थे कि ये ठीक व्यक्ति नहीं है। पर हम नए नए थे, ज्ञान में भी नए थे, हर चीज में नए थे, हमें पता नहीं था। तो हमने एक दिन देखा कि सुबह सुबह 3:30 बजे वो भाई पैदल जाते हैं मधुबन, पीछे के रास्ते से। हम तो बस से जाते थे, उनको हमने पैदल जाते देखा। 3 बजे, 3 से भी 3:30 से भी पहले बस 3:30 बजे जाती है वहां से, वो उससे भी पहले जाते थे और हर दिन नियमित जाते थे, एक दिन भी मिस नहीं। तो एकदम मुझे लगा कि मैं इनके बारे में ऐसा क्यों सोच रहा था, उनका अपना संस्कार है पर उनकी धारणा कितनी श्रेष्ठ है कि एक दिन भी मिस नहीं करते और पैदल जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, टॉर्च लेकर जाते हैं, वहां भालू क्या क्या होता है, निर्भय, कोई डर नहीं। फिर एकदम से उनके प्रति जो भावनाएं थी वो चेंज हो गई। तो हमारे सबके मन में एक दूसरे के प्रति कौन से भाव होते हैं? निगेटिव भाव होते हैं। ये ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, इसको मान शान की इच्छा है, ये सब भाव रहते हैं। इसलिए कहा अपने मन को गहराई से समझना है, ये महत्वपूर्ण कार्य है कि मन में क्या चलता है, उसको क्या चाहिए, कौन से भाव, कौन से विचार, किस किस से वो घृणा करता है और नफरत करता है, और किस किस को, कौन से लोग उसे अच्छे लगते हैं। जो हमारी स्तुति करते हैं वो हमें अच्छे लगते हैं, और जो हमारी निंदा करते हैं वो अच्छे लगते हैं क्या? अच्छे नहीं लगते, लोग खराब है ये। पर वास्तव में जो स्तुति करने वाले हैं उनसे हम क्या सीखते हैं? कुछ भी नहीं। पर जो निंदा करता है वो क्या करता है? हमें अलर्ट कर देता है, सावधान कर देता है। हम उससे सीखते हैं बहुत सारी बातें, क्योंकि वो हमारे अवगुणों पर चिंतन भी करता है, रिसर्च करता है, पीएचडी करता है, चिंतन करता है गहन। अपना ज्ञान योग छोड़कर हमारे अवगुणों पर सोचता है ना, तो उससे जो फीडबैक आता है वो हमारे बहुत काम का है। इसलिए कोई भी हो और कैसा भी हो, हर एक से क्या करना है? सीखते रहना। कैसा भी हो, कोई भी हो, हर आलोचक हमारा शिक्षक है। हर एक आलोचक, निंदा करने वाला, निंदक। इसलिए ये भी एक कार्य है जो रोज करना है। भट्टी अर्थात परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन। भट्टी अर्थात एक क्रांति, एक सूक्ष्म क्रांति, एक आंतरिक क्रांति। तो आप सभी घर गृहस्थ में रहते हैं, वहां रहकर पुरुषार्थ करते हैं, सब कुछ संभालते हुए। बाबा ने कुमार कुमारियों को वीर और वीरनिया परंतु कहा है, परंतु जो गृहस्थ में रहते वो महावीर है, महावीरनी है। हमारी ये माता आ रही है, ये हॉस्पिटल में किशोर भाई की सेवा में थी, इनकी डायरी आज हमने देखी सुबह। जबरदस्त पुरुषार्थी है ये माता, पूरा लिखती रहती है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। डायरी लाई है क्या माता जी? पूरी डायरी भर देती है, बैठे बैठे लिखना जारी। तो लिखना ये एक और पुरुषार्थ है। सब लिख सकते हैं? कौन कौन नहीं लिख सकता? न लिखने वाले कौन कौन है? एक, दो और दो लोग, दो लोग हैं। और कौन है जो लिख नहीं सकते? ब्रह्मा बाबा के लिए कहानी बताते हैं कि एक बार यज्ञ में दाल बहुत कम थी, तो बोर्ड पर लिख दिया गया था कि सबको एक ही बार दाल लेनी है। बोर्ड पर लिखा था कि दाल एक ही बार लेनी है। तो एक माता आ गई वापस दाल लेने के लिए, तो बाबा ने कहा उसको, क्या तुमने पढ़ा नहीं बोर्ड पर क्या है? वो कहे, मुझे पढ़ना ही नहीं आता है। तो बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, ले लो। केरला की एक माता है, उसकी उम्र है 99, अभी अभी उसने पढ़ना सीखा है, और उसको 98 मार्क मिले हैं। तो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, जिनको लिखना नहीं आता है वो लिखना सीखना है अपने पोतों से, या गुजराती में। तो लिखना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, और लिखना भी कैसे? सुलेख, सुंदर अक्षरों में। जब हम लिखते हैं तो लिखना क्या है? एक ध्यान है, एक मेडिटेशन है, योग है वो भी एक। और इन हाथों ने बड़े पाप किए हैं, किए है कि नहीं? बहुत किए है। तो ये विकर्म कैसे विनाश होंगे? लिखकर। सुमान लिखो, पॉइंट्स लिखो, चिंतन लिखो, अचानक जो टच होता है वो लिखो। तो रोज कम से कम एक पेज लिखना है। लिखेंगे सभी? पूरी मुरली लिख सकते हैं? कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट्स, या जैसे माता है, इनकी डायरी बाद में दिखा देना सबको। हमारे हॉस्पिटल में एक माता जी एडमिट थी, इधर ही लोकल भक्त है, उनके पास इतना बड़ा एक रजिस्टर है लाल रंग का, वो जैसे वो बही खाता होता है ना, उसमें ऐसे कॉलम्स, एक एक कॉलम में राम 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 राम, इतनी बड़ी बुक्स वो उसकी, एकदम बारीक बारीक अक्षरों में। तो हमने कहा, ये क्या करते हो? बोलते, यही तो है जो करना है जीवन में, यही कमाई है, बाकी तो सब व्यर्थ है। लिखती रहती है बस। खांसी के लिए एडमिट थी 5-6 दिन, पर जब भी देखो वो लिख रही है राम राम राम। तो लिखते रहना है, और लिखना धीरे धीरे क्या करना है उसको मेडिटेशन बना देना है, योग बना देना है। एक ऐसी अवस्था कि लिखते लिखते ही हम जैसे बाबा से जुड़ जाए। धीरे धीरे लिखना है, आराम से लिखना है। कैलीग्राफी होती है, कैलीग्राफिक स्टाइल, सुंदर अक्षरों में धीरे धीरे। जैसे हम अपने अक्षरों पर काम करते हैं, हम अपने अंतर्मन को बदलते हैं। एक ग्राफोलॉजी होती है। एक मुंबई में एक मैडम है जो हमारे काफी संपर्क में है, वो ग्राफोलॉजिस्ट है। आप उसको किसी का भी सिग्नेचर दिखा दो, वो उस व्यक्ति का आदि मध्य अंत बता देती है। उसमें से साइन बता दो या हैंडराइटिंग दिखा दो, जैसे दो अक्षर लिख रहा है कोई व्यक्ति और दो अक्षरों में अंतर ज्यादा है, अर्थात उसके जीवन में बड़ा अकेलापन है। बहुत सारी चीजें हैं, उसने कुछ कुछ जो आतंकवादी है उनके हस्ताक्षरों को देखा था, जैसे ई लिखा जाता है अंग्रेजी में, जो पूरा ऐसा क्रॉस करके ई लिखते हैं, मतलब हिंसक भावना है मन में। एक एक अक्षर व्यक्ति कैसा लिखता है उससे उसके चरित्र का पता चलता है, और यदि हम इसको बदल दे तो स्वभाव को भी बदल सकते हैं। ये एक उसकी पॉजिटिव फाइंड फैक्टर है। टी कैसा लिखता है व्यक्ति, टी टी होता है ना अंग्रेजी में, पता है ना, टी स्मॉल टी, ऊपर की जो दंडी है वो कितना कॉन्फिडेंटली व्यक्ति डालता है, उससे उसका चरित्र का पता चलता है। स्वामी विवेकानंद की हैंडराइटिंग का एनालिसिस किया गया, वो जो टी होता है ऊपर है, बीच में नहीं है, ऊपर 30% 80% में ऊपर, वहां जिनका होता है दे आर हाईली कॉन्फिडेंट पीपल। स्ट्रोक कहां दिया जा रहा है, आर का स्ट्रोक कैसा दिया जा रहा है, ए का स्ट्रोक कैसा दिया जा रहा है, एक एक अक्षर से एक एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का पता चलता है। इसलिए इसमें तो हम नहीं जाएंगे, पर सबको काम क्या करना है, रोज लिखना है। क्या लिखेंगे, मुरली की पॉइंट्स लिखो, मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर, धारणा के लिए सार 1-2, वरदान ऊपर का और स्लोगन, इतना लिख सकते हैं। रोज लिखना है, एक अच्छी डायरी बनानी है, कलर पेंस का यूज करना है। हम कौन है, सभी स्टूडेंट है ना, विद्यार्थी, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पेन पेपर डायरी रबर स्केच पेन सब कुछ होना चाहिए। अव्यक्त मूल्यों की पूरी किताबें रखी हो, उसको हम पढ़ते रहे ताकि मन इधर उधर ना भटके, ये काम करना है। तो लिखना ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे सुनना वैसे ही लिखना, ठीक है। और जब भी क्लास में जाओ या कोई भी क्लास में बैठो तो डायरी पेन चाहिए, नोट्स बनाते रहना, चाहे कोई भी क्लास करा रहा हो, क्योंकि हमारे मन में कुछ तो एक ऐसा वो बताएगा जो हमें नया हो, कुछ तो हमें टच, एक तो पॉइंट होगी जो मुझे बिल्कुल पता नहीं है, उसको क्या करना है, नोट करके रखना है। तो हर एक के पास क्या होनी चाहिए, एक डायरी, एक पेन पेंसिल स्केच पेन, लिखते रहना है पॉइंट्स। तो एक पुरुषार्थ क्या है, लिखना। हम सोच के आए थे कि माँ के बारे में कुछ कहेंगे, क्योंकि सारी माता है यहाँ, तो इस ज्ञान में भी बहुत सारी माँ है। सबसे पहली माँ है आत्मा, सबसे पहली माँ कौन सी है, आत्मा ही माँ है। तो हमें क्या करना है, सबको आत्मा समझ, अपने आप को माँ समझना है, पर किसकी, किसकी माँ, स्वयं की, किसकी माँ, सारे विश्व की माँ। मातृत्व धारण करना है। माँ बनना तो बहुत आसान है, शरीर से शरीरों को जन्म देना आसान है, पर मातृत्व जो है उसका संबंध माँ बनने से नहीं है, वो एक भाव है, एक भावना है, सारे जगत की माँ, अखिल संसार की माँ, वो एक भाव है, उस भाव को लाना है। गुलजार दादी एक बार एक सेंटर पर गए थे तो वहाँ की छोटी बहनें आ गई और सभी दादी से कहने लगी कि हमारी जो इंचार्ज बहन है ना ठीक नहीं है, उसका कुछ करो, कंप्लेंट की ये ठीक नहीं है। दादी ने उनको सुना और फिर एक बात कही, उनको कहा तुम उसकी माँ बनकर पालना करो। किसकी? बड़ी बहन जी की। क्या करो? माँ बनकर पालना करो। अंदर से माँ जो होती है ना अपने बच्चे के सारे अवगुणों को क्या करती है? समा लेती है। पर वो हमारा मातृत्व ऐसा ना हो, मोह वाला ना हो, जैसे एक माँ है उसका बेटा स्कूल से आया ही नहीं है, बहुत टाइम हो गया, 2 बजे स्कूल पूरी हो गई, 4 बज गए अभी तक नहीं आया, वो निकलती है रास्ते पर, कहाँ आ गया मेरा बेटा, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। और फिर लोगों से पूछती है कहाँ है, तुमने देखा छोटा सा एक बच्चा टाई लगा कर है? तो कहते हाँ हाँ देखा, अभी अभी एक एक्सीडेंट हुआ है उधर। वो जाती है, भीड़ है, सबको भीड़ से हटाती है और रोने लगती है बिल्कुल कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। और एकदम जाती है, सबको बाजू में करती है और देखती है एक बच्चा पड़ा हुआ है लहूलुहान, पर वो कहती है हाँ मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। अब शांति मिलती है। तो ये मातृत्व है या मोह है? मोह है। तो अपने मोह को बढ़ा देना है, सार्वजनिक कर देना, सब हमारे, मैं इस जगत की माँ हूं, मुझे सबकी माँ बनकर पालना करनी है, चाहे कोई भी हो। तो ये कितना अच्छा सम्मान है, इसमें विकार नहीं आएंगे, मोह प्रकट नहीं होगा, पहला। दूसरा परमात्मा, वो क्या है? हमारी माँ। तो उसको कैसे याद करना है? माँ के रूप में याद करना। श्री रामकृष्ण परमहंस थे, सुना होगा, बंगाल में, वो माँ की साधना करते थे, माँ की उपासना करते थे। और एक दिन एक साधु, एक सन्यासी वहां आया, वो सन्यासी था, वो ये सब नहीं मानता था, भक्ति अवतार, वो ब्रह्म को मानने वाला। वो देखता है रामकृष्ण परमहंस को और कहता है अरे 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 ये क्या कर रहे हो तुम, ये तुम गलत मार्ग पर हो, ये भक्ति से कुछ नहीं होगा, साधना करनी पड़ेगी, ब्रह्म की साधना, उसके लिए ये सब कुछ काम का नहीं है, तो मैं तुम्हें अभी संन्यास में दीक्षित करता हूं। तो रामकृष्ण कहते हैं ठीक है, मैं पहले माँ से पूछ के आता हूँ। उनको लगता है इसकी माँ होगी कोई, तो वो मंदिर में जाते और माँ से पूछ के आते और कहते हैं हाँ माँ ने हाँ कहा है। तो कौन सी माँ है तुम्हारी? कहते काली माँ। उनको हंसी आती है, कहते ठीक है ओके। 3 दिन उसको बिठाते हैं, एक उसको लेके जाते हैं कुटिया में और उसको कहते हैं यहाँ पर ध्यान रखो कि मैं ब्रह्म हूं। तो वो बैठते हैं ध्यान करने, पर उनको माँ दिखाई देती है, काली माँ। वो तोतापुरी कहता है फिर से बैठो। वो कहता है मैं क्या करूं, मुझे बार बार माँ ही दिखाई देती है। वो कहता है उस माँ को हटाना पड़ेगा तुमको। तो वो एक कांच का टुकड़ा लेता है और यहां निशान करता है ऐसे, कहते हैं अब ध्यान में बैठो। तो वो जो बैठते हैं ध्यान में, तो 3 दिन वहीं दिन रात वो तोतापुरी सोचता है ये तो निर्विकल्प समाधि की अवस्था है, इस अवस्था को पाने के लिए मुझे 40 साल लगे, इनको 3 दिन में प्राप्त हो गई। और जब वो 3 दिन के बाद वापस आते हैं तो ये तोतापुरी उनके भक्त बन जाते हैं बाद में। वो कहते हैं मुझे विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है माँ पर, पर धीरे धीरे विश्वास हो जाता है। तो वो जो भक्ति थी, कौन सी भक्ति थी? वो वात्सल्य भक्ति, इसको क्या कहते हैं? वात्सल्य। परमात्मा कौन है? मेरी माँ है। एक सेंटर पर एक माता जी थी, तो उसको सब्जी काट रही थी और अचानक चाकू लग गया, तो जोर से चिल्लाई, मम्मी। तो सेंटर की दीदी ने कहा, आप इतने पुराने हो कि अपने मम्मी को याद करते हो? वो कहते, मैं तो शिव बाबा को मम्मी करके बुला रही थी। किसको बुला रही थी? शिव बाबा। तो युक्ति अच्छी है ना, कौन सी मम्मी को बुला रही थी अब उसको ही पता है। तो बाबा को क्या करना है? अपनी मम्मी बनाना है, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, मुझे संपूर्ण पवित्रता चाहिए, संपूर्ण ब्रह्मचर्य चाहिए, ऐसी स्थिर अवस्था चाहिए, तो उसको देना पड़ेगा। तो दूसरी माँ कौन है? परमात्मा। तीसरी माँ ब्रह्मा। ब्रह्मा भी कौन है? माँ ही है ना। सुबह सुबह अनुभव करना कि वो माँ मेरा हाथ पकड़कर मुझे विश्व की सैर करा रही है, अनुभव करना। ब्रह्मा के पास इस सृष्टि के सारे अनुभव है, परमात्मा निराकार है, उसका एक अलग ज्ञान है, पर ब्रह्मा के पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो उसको बताना कि ये हो रहा है, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो वो भी अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी से एज अ माँ उत्तर देगा। तो ये अनुभव कब करना है? अमृत वेला। अगला है मम्मा। मम्मा भी कौन है? माँ है, यज्ञ माता है। हम बहुत कुछ सीखते हैं। मम्मा चलती थी तो एकदम शांत, स्थिर, धीरे धीरे धीरे। लास्ट जो टाइम था मम्मा का, कैंसर का, बहुत पीड़ा, बहुत वेदना थी शरीर में। हम जब मुंबई में थे, मम्मा का एक्सरे देखा था, चेस्ट एक्सरे, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, और वो एक्सरे में लंग्स में भी वो फैला हुआ है, अभी भी रखा है उधर एक्सरे बीएससीएस में, मेटास्टेसिस सब तरफ, यहाँ तक कि स्पाइन में भी। तो ऐसा जो पेशेंट होता है उसको असहनीय वेदना होती है, असहनीय वेदना, परंतु स्थिर शांत। हमने इतनी सारी दादियों को देखा, यहां पर लाइन लेना पड़ता था, यहां प्रिक करो, यहां शांतामणि दादी, यहां से डालो नहीं मिलता, यहां से डालो, वहां से डालो, इधर से डालो, लाइन ही नहीं मिलती थी, क्योंकि कुछ चमड़ी नहीं थी, पूरी ऐसे हो गई थी, पर उनको कोई दर्द नहीं, जैसे अशरीरी। भोली दादी, भूरी दादी, इतनी सारी दादियों को देखा, स्थिर। जानकी दादी, जैसे वो दर्द से परे थी, तो वो मम्मा की भी वैसी अवस्था थी। दर्द को सहन करने की शक्ति को बढ़ाना है। हम देखते हैं दो पेशेंट आते हैं, एक ही बीमारी है, पर एक बहुत घबराता है, डरता है, दूसरा बिल्कुल नहीं, एकदम स्थिर, एकदम शांत। बीच में एक पेशेंट एडमिट हुआ था, वो नेशनल लेवल का वो था, भूतपूर्व, पर बॉडी उसकी बहुत थी, बॉक्सर था वो, एकदम ऐसे, को कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गई थी उसको, माउंट आबू में आए थे वो लोग खेलने के लिए, तो उसको सिस्टर यहाँ पे लाइन लेने गई, तो वो रोने लगा, बोला मुझे इस सुई से डर लगता है। ऐसे बॉडी बिल्डर था वो, सिक्स पैक्स, स्टार्टेड क्राइंग, उसको रोने लगा, बोला ये मैं नहीं देख, ये नहीं कर सकता मैं ऐसा, बाकी गोली दे दो ये नहीं लगाना है, इतना डर। तो तितिक्षा कहते हैं इसको हिंदी में, संस्कृत में सहना, दर्द को सहना, और ये हमारे मन के ऊपर है। अगर हमें प्रैक्टिस है, संकल्प है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। Even the venom of the snake is poisonless if you can firmly deny it. स्वामी विवेकानंद ने कहा है, यदि आपको सांप ने काटा पर आपने मन में संकल्प किया कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो उसका जहर प्रभावहीन रहेगा, कुछ नहीं होगा। नहीं तो लोग तो पहले ही डर जाते हैं। तीन यात्री एक होटल में आते हैं, रात भर रुकते हैं, और एक जो यात्री होता है सुबह सुबह जल्दी उसको निकलना होता है, 6 बजे वो निकल जाता है, और बाकी जो दो यात्री होते हैं उन्होंने रात में कुछ खाना खाया था और उस खाने में एक मरा हुआ जहर सांप गिर गया था और उन दोनों की तत्काल मृत्यु हो जाती है। अगले दिन देखते हैं तो दोनों मरे पड़े हैं। इसे पता ही नहीं है अपना सुबह उठ के चला गया, ये घटना हो गई। एक साल के बाद ये जो यात्री था वापस उसी होटल में आता है और तब उसे पता चलता है कि मैंने एक साल पहले जो खाना खाया था उसमें तो मरा हुआ सांप था, और जैसे वो सुनता है वो मर जाता है। कब? एक साल बाद। ये क्या था? मन 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 मन। तो तीसरा चौथा कौन सा है? मम्मा मम्मा। उससे हम क्या सीखते हैं? सहना। लास्ट डे भी 400 लोगों को टोली, अंगूर की टोली दी, बाद में शरीर छोड़ा। अगला है ड्रामा। ये ड्रामा क्या करता है? हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये भी माँ है, बहुत कुछ सिखाता है। जीवन में नए नए एक्सपीरियंस, नए नए परिस्थितियां, हर दिन नया नया कुछ होता है और नया हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहता है। सीखते रहना है, दुखी नहीं होना है। इस यज्ञ में तीन प्रकार की आत्माएं हैं। पहली वो जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है, उन्हें सब कुछ स्वीकार कर लिया और आराम से चल रहे। दूसरी वो जिन्होंने स्वीकार नहीं किया है, वो कहते हैं ये अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, विद्रोह करने वाले, लड़ने वाले। और तीसरे वो है जो ना विद्रोह कर सकते ना स्वीकार कर सकते, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उदास, दुखी, अंदर ही अंदर घसीट रहे, दुख में जी रहे। उनको लग रहा है ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, पर उनके पास शक्ति नहीं है, ना विरोध करने की शक्ति है, ना स्वीकार करने की शक्ति। वो किस में जाते हैं? डिप्रेशन, दुखी होकर जीते हो। हम कहाँ हैं? क्या हमने हथियार उठा लिए और लड़ रहे? कितना भी लड़ो क्या मिलेगा? और हमने स्वीकार भी किया है तो वो कैसे स्वीकार किया है? जबरदस्ती नहीं, दुखी होकर नहीं, हायर अंडरस्टैंडिंग, एक समझ के साथ कि इस आत्मा का ये पार्ट है और हम उसे बदल नहीं सकते। हम ये भी देखते हैं कोई आत्मा बहुत गलत कर रही है और वो गलत ही करते जा रही है, उसका पार्ट ही वैसा है। अगर वो गलत करना बंद कर दे तो ड्रामा खत्म हो जाएगा, इसके लिए वो करते रहेगा। पर ये भूलना नहीं, हर कर्ता का कर्म उस तक लौटता है। मैंने जो कुछ किया है वो लौट कर आएगा, बच नहीं सकते। जो षड्यंत्र किए है, जो झूठ बोला है, जो दूसरों के विषय में गलत बोला है, वो सब क्या होगा? लौट कर वापिस आएगा। इसलिए कोई छूट तो कोई नहीं सकता, पर हाँ टाइम वो अलग अलग है। तो ड्रामा से क्या करना है? दिन भर सीखते रहना कि आज हमने ये सीखा, आज हमने वो सीखा, नया नया सीखते रहना। ये नहीं कि ये लोग, इसने ऐसा क्यों किया, ये निंदा क्यों करता है, ये ग्लानी क्यों करता है, ये विरोध क्यों करता है, ये क्रिटिसाइज क्यों करता है, ये लोग ऐसे क्यों है, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न है मैंने मुझे क्या सीखना है। तो ये कौन सा है? ड्रामा। उसके बाद है प्रकृति माँ। ये प्रकृति भी क्या है? माँ है। इसकी गोद में जाके बैठना है, सीखना है। झाड़ के नीचे जाके बैठो, वो झाड़ बहुत कुछ सिखाएगा, नदी सिखाएगी, ये पक्षी सिखाते हैं, सब कुछ सिखाता है। एक एक जो चीज इस सृष्टि में है सब हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। बारिश, बादल, सूरज, चांद उनसे जुड़ना है, उनसे वार्तालाप करनी है, उनके साथ बैठना है, रोज ये काम करना है। तो प्रकृति, उसके बाद में धरती माँ। धरती माँ के साथ क्या करेंगे, क्या करेंगे? नंगे पाँव क्या करना है, धरती पर चलना है। हमारे जो पैर है ना, इसमें बहुत सारे चक्र हैं इधर, जिनको नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, नंगे पाँव धरती पर चलना है। ये सारे चक्र सक्रिय हो जाते हैं, ऊर्जा आती है। धरती एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेयर फुट वॉकिंग। इस पर किताबें लिखी गई है, अर्थिंग, बड़ी बड़ी। और बहुत सारी बीमारियों का कारण यह है कि हम इस धरती के संपर्क से टूट गए। इसलिए रोज क्या करना है, चप्पल बाहर रखनी बाजू में, और जहां धरती होगी वहां क्या करना है, चलना है, वॉकिंग करना है। तो उस वॉकिंग से क्या होगा, हमको एनर्जी मिलेगी, पावर आएगी हमारे भीतर। तो ये कार्य रोज होना चाहिए, थोड़ी देर करना है। और चलने के तुरंत बाद पाँव नहीं धोना है, थोड़ी देर मिट्टी चिपकी रहे। हाँ, जिनको डायबिटीज है उनको देख लेना है कि मिट्टी में कोई कांच का टुकड़ा नहीं है, कोई पत्थर नोकीला नहीं है। लोगों ने ऐसा ट्रैक क्रिएट करके रखा है, इतनी जमीन चलने के लिए। और जब हम चलते हैं, हम प्रकृति के साथ भी जुड़ते हैं। अनुभव करना है कि मेरे पैरों से ऊर्जा धरती को जा रही है, धरती की प्राण ऊर्जा मुझ में आ रही है, मेरे शरीर के सारे रोग ठीक हो रहे, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, सब कुछ। यह धरती माँ है, उपचार हो रहा है मेरा, चिकित्सा हो रही है। ऐसा अनुभव करना है धरती से। तो धरती क्या है, माँ। उसके बाद में भारत। ये भारत क्या है, माँ है ना, अविनाशी खंड है ये भारत, मेरी माँ है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं, ये भाव। जैसे हम सरकार के नियम फॉलो करते हैं, वैसे प्रकृति के भी नियम है, उसको भी फॉलो करना है। उसको अगर फॉलो नहीं करते तो बीमार पड़ते। इसलिए धीरे धीरे अपने भोजन पर भी काम करना है। बहुत ज़्यादा उसमें तीखा, तला, मसाला, नमक, ये जितना ज़्यादा रहेगा हम प्रकृति से टूट जाते हैं। प्रकृति अर्थात नैसर्गिक, प्राकृतिक, जितना वो हमारे शरीर में जाएगा उतनी ऊर्जा रहेगी, शक्ति रहेगी। जितना हम ये सब डालेंगे तो ढेर बीमारियां आएगी, और जहां बीमारियां है वहां अध्यात्म फेल, कुछ नहीं कर सकते, फिर पड़े रहो बिस्तर पर, दवाइयां खाते रहो। इसलिए अपने भोजन में भी चेंजेस लाने हैं धीरे धीरे। और तीसरा है ईश्वरीय नियम मर्यादा है, उनका भी उल्लंघन करें तो दुख होगा। तो तीन रूल्स है, एक सरकार के नियम, एक प्रकृति के नियम, एक ईश्वरीय परिवार के नियम, ईश्वरीय संविधान। तीनों रूल्स को अगर तोड़े, केवल एक ही है कि सरकार के अगर नियम तोड़ते हैं तुरंत दंड मिलता है, प्रकृति के नियम तोड़ते तो बीमारी थोड़े समय के बाद आती है, और ईश्वरीय नियम तोड़ते हैं तो धीरे धीरे अवस्था गिरने लगती है, अमृत वेला मिस होने लगेगा, बेचैनी होने लगेगी, स्थिति गिर जाएगी कि मैं कुछ करूं, लोगों की प्रसिद्धि, लोगों की प्रशंसा की भूख अंदर जगेगी, ये सब अंदर चालू हो जाएगा, हलचल की अवस्था आएगी, अर्थात अंदर से स्थिति गिर चुकी है, ये भी दंड है। तो हम बात कर रहे थे भारत की। तो भारत क्या है, हमारी माँ है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। उस दिन भी हम कह रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, दिसंबर 56 में वो रेल मंत्री थे, केरला में, तमिलनाडु में एक रेल की दुर्घटना होगी जिसमें 150 लोगों की मृत्यु हो गई, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। सबने कहा इसमें आपकी कोई भूल नहीं है, आपकी क्या चूक। वो चाहते तो एक संगठन बना सकते थे, एक कमेटी बना सकते थे, SIT, और फिर जांच हो सकती थी कहां भूल हुई, किसकी भूल हुई। उन्होंने कहा ना, सारी जिम्मेदारी किसकी है, मेरी, और रेजिग्नेशन दे दिया। एक गोल्ड स्टैंडर्ड सेटअप किया, एक कीर्तिमान स्थापित किया, जिसका उदाहरण आज भी दिया जाता है, देश के लिए प्रेम, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया उस मिट्टी के प्रति प्रेम, यह हमारा कर्तव्य है। इसलिए भारत भी क्या है, हमारी माँ है। इसलिए यहां पर यदि कुछ हो रहा है, यदि हम कुछ कर सकते हैं तो करें। कविता है दिनकर जी की, समर शेष है, युद्ध अभी शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। केवल जो अत्याचार कर रहा है केवल वो पाप का भागी नहीं है, जो तानाशाह है, जो शिकारी है, जो हंटर है, केवल वो पापी नहीं है, जो तटस्थ खड़े है, जो चुपचाप खड़े और अत्याचार को देख रहे, समय लिखेगा उनके भी अपराध, वो भी अपराधी है। तो इस भारत के लिए, इस देश के लिए भी हमारे मन में क्या हो, अतीव प्रेम। दिखाया है इतिहास में चाणक्य का एक ही सपना था, अखंड भारत। क्या था सपना? भारत एक हो जाए, 16 जनपदों में बटा हुआ भारत एक हो जाए फिर से। उस समय तो जरूर ये आत्मा भी देवकुल की ही आत्मा होगी जिसके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ। जितने फ्रीडम फाइटर्स है इस देश के लिए लड़ने वाले, वो सब कौन थे इतिहास में? कौन थे? हम। हो सकता है इन्हीं माताओं में से कोई रानी लक्ष्मीबाई यहां बैठी है। कौन है जरा देख लेना, दीदी बता देंगे। कोई ना कोई अहिल्या भाई होलकर, कोई सावित्री भाई फुले, इधर ही है ये सारे। क्योंकि ये सब लोग कौन थे, इन्हें देश के लिए प्रेम था। तो ये देश के लिए प्रेम केवल देवकुल की आत्माओं के लिए हो सकता था, क्योंकि ये सतयुग की आत्माएं हैं जो उसी भारत में जन्मी थी और पुनर्जन्म लेते लेते जिन जिन जन्मों में वो थी, देश के लिए प्रेम था, देव, देश और धर्म, इन तीन के लिए, देव की अर्थात भगवान, धर्म के लिए और देश के लिए, इन तीनों के लिए जिनको भी प्रेम है इतिहास में, वो सब आत्माएं इसी देवकुल की थी और यहां प्रकट हुई है सबके सब। तो हमने कितनी बातें देखी, सबसे पहले आत्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा ब्रह्मा, चौथा मम मा, उसके बाद में ड्रा मा, उसके बाद में प्रकृति माँ, उसके बाद में धरती माँ, और आठवां भारत माँ। आठ माए हो गई, बाकी आप निकालना होमवर्क। बहुत सारी माए हैं, ये ईश्वरीय परिवार भी माँ है, ये ज्ञान भी माँ है, गीता भी माँ है, बहुत सारी है। तो अभ्यास करना है, अलग अलग नवीनता लानी है, चिंतन की भी नवीनता लानी है। वही 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 नहीं, कुछ तो नया। इसके लिए क्या कहा, सबसे पहले बात बताई रोज प्रकृति में थोड़ी देर जाना है, दूसरी बात बताई थी मौन का अभ्यास करना है, तीसरा और क्या बताया था, लिखना, रोज थोड़ा सा लिखना, एक पेज लिखो, आधा पेज लिखो, कुछ तो लिखो, पर लिखना आवश्यक है। फिर धरती पर नंगे पांव चलना, थोड़ी देर धरती से बात करना, पूछना, उससे वार्तालाप करना, नए नए प्रयोग करना, योग के प्रयोग करना। और एक काम, दादियों की ढेर सारी क्लासेस है पुरानी, यज्ञ इतिहास की, रोज एक क्लास सुननी, और केवल सुनना नहीं है, क्या करना है उसको, नोट्स बनाने हैं उसके, जैसे सुन रहे पॉज करो उसको, फिर थोड़ा सा लिखो। वो कैसे चलाना, वो तो आता है ना मोबाइल सबको कि नहीं? तो मोबाइल तो है, पर पांडव भवन में सुबह अमृत मेडिटेशन हॉल में मोबाइल ऐसा बजता है मेडिटेशन के समय कि पहले तो वो माता को ये नहीं पता रहता है मोबाइल मेरा बज रहा है, फिर लोग उसको बताते हैं कि तुम्हारा मोबाइल बज रहा है, फिर उसके बाद में आधा टाइम तो किस खाने में मोबाइल रखा है पर्स के, उस खोलने में जाता है, फिर निकालने के बाद कौन सा बटन दबाना है अब उसको पता नहीं, तब तक चालू रहता है शिव की याद रहेगी तब, शिव की याद रहेगी तब, नॉनस्टॉप बजते रहता है जोर से। अगर फोन उठाया तो हेलो करते हुए जोर जोर से बाहर, ये प्रोसीजर है रोज की। तो बेटे ने मोबाइल तो दे दिया पर पूरे एप्लीकेशंस कैसे चलाना वो उसको पता नहीं। तो क्लास तो सुनती है क्या मोबाइल में सब लोग कि नहीं? चलो ठीक है, उतना तो आता होगा, आता है ना, हाँ बस उतना सीख लेना। तो उसमें सुनते समय क्या लिखना है, पॉइंट्स निकालने हैं थोड़े, अच्छा ये अच्छा लग रहा है, अच्छा ये अच्छा लगना है, और सबसे सुन सबसे सीखना है, सबसे सीखना है, सब अच्छे है, मुझसे सब अच्छे। अभी हम लास्ट में एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? तो उस एक्टिविटी के लिए ये जितनी माता है सब इधर आ जाओ, इधर 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 सारी आ जाओ। सुखदेव भाई आप इधर आ जाओ, इनको एक लाइन से खड़े करना है इधर। उधर की भी कुछ माताएं आ सकती है, आधी माताएं सब नहीं आएगी, एक लाइन से बाहर या इधर ही कर लेते हैं, माइक तो उधर लेके जाना। उधर जाओ, उधर जाओ, उधर 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 उधर, हाँ एक के पीछे एक, एक के पीछे एक आ जाओ सब, इधर 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 इधर, जिनको सुनाई देता है ना वो आना। जो सुनाई नहीं देता वो बैठ जाओ, इधर 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 लाइन, एक लाइन बनाओ,
चार पांच माताएं जिनको सुनाई
नहीं देती। ये बढ़िया है, उधर देखना है। एक संत ने कहा है, पापा ची वासना नको दाऊ दौड़ा त्यावना मुकास बढ़ावना। अच्छा है कि मुझे सुनाई नहीं देता है, संसार का अपवित्र मुझे सुनाई नहीं देता है, अच्छा है कि मुझे बोलने नहीं आता है। जो ज्यादा ही बूढ़ी माता है वो थोड़ा बैठ जाओ, सबके सब नहीं आना है, यंग माता है आनी है। जो एक मिनट टाइम एज लिमिट सेट कर दो, खड़े रहना एक मिनट, मुझे माइक दे। इधर आ जाओ, आप इधर खड़े रह जाओ, इनके पीछे एक आ जाओ, नहीं नहीं जो थोड़े यंग है वो आ जाओ, इनके पीछे, इनके पीछे आप आ जाओ, उनके पीछे, उनके पीछे आप हट जाओ, वहां से पीछे चले जाओ, एकदम पीछे जाओ, इनके पीछे, इनके पीछे, पीछे जाओ, पीछे पीछे पीछे, इनके पीछे, इनके पीछे, बस इतना ही। और थोड़े दो तीन ले लो, दो तीन माता और आ जाओ, ठीक है? एक लाइन से खड़े हो जाओ, हाँ एक लाइन में आप सबसे पहले आ जाओ, एकदम पीछे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट स्ट्रेट, पीछे जाओ पीछे, इतना इतना अंतर रखो, थोड़ा थोड़ा अंतर, समझ में आ गया ना? हाँ और पीछे जाओ, और पीछे, हाँ ये वायर इधर ले लो, हाँ अभी ठीक है। बाकी लोग इधर, ए नहीं बाकी इतने नहीं, इतने तीन चार निकल जाओ, इधर आ जाओ, आपको वापस एक चांस देंगे, हाँ इधर आ जाओ, एक ही लाइन चाहिए बस। तीन माताएं हट जाओ वहां से पीछे वाली, तीन निकल जाओ, हाँ। तो अभी एक एक्टिविटी करेंगे, इसमें बहुत अच्छा एक राज समाया हुआ है। जो बातें हमारे कानों में आती है दुनिया की, ठीक है ना, वो कितनी सत्य है। जैसे पहले एक्टिविटी करते हैं फिर बताएंगे। तो ये सब लोग देख रहे हैं, अभी सभी माताएं जो है अबाउट टर्न उधर देखेंगे, पीछे आप छोड़ के, आप इधर ही देखेंगे, ठीक है? एक एक्शन जो है सुखदेव भाई इनको सिखाएंगे, सुखदेव भाई आप इनको सिखाना, एकदम सिंपल एक्शन, और वो एक्शन आप इनको सिखाएंगे, ठीक है? आप सब आंखें बंद कर लो, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद कर लो सब लोग, और आप जो ऑडियंस है वो देखो अच्छे से। आप क्या देखेंगे, ये भाई जो है एक एक्टिविटी, एक एक्शन इनको सिखाएंगे, और ये बहन इनको सिखाएंगी, ये बहन इनको सिखाएंगे, सब एक एक को सिखाएंगे, उस एक्शन का क्या होता है वो देखना है हमको। तो आप अच्छे से देख लो, आंखें बंद, स्टार्ट। समझ में आ गया, करके दिखाओ। अच्छे से करो जैसे इन्होंने किया था, मुंह नहीं, मुंह से नहीं बोलना। हाँ फिर से बताओ। सबने देख लिया, एक मिनट आंखें बंद करो आप लोग, आप लोग एक मिनट सबको दिखा दो, आप सबको दिखा दो, इधर 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 उनको नहीं, अरे आपने आंखें बंद करनी है, आंखें बंद ही रखेंगे ये खाली, आप लोग सबको दिखा दो क्या है आपका, दिखाओ अच्छे से, नहीं भूल गए, आंखें बंद देखना नहीं है, देख लिया सबने, देख लिया ना, चलो बहन जी इधर देखो, आप इनको सिखाओ, ठीक है मुड़ जाओ, आप ये वाला इनको सिखाना है, इधर सीख लिया, पीछे आप इनको सिखाना, माता जी इधर, ठीक है डन, आप इनको सिखाना है, इनको सिखाओ, पीछे नहीं देखना है, हाँ ठीक है टर्न हो जाओ, माता जी इधर, ये जो एक मिनट अच्छे से देखो, ठीक है टर्न, इधर आ जाओ बहन जी, इधर ये क्या सीखते, हाँ टर्न, ये माइक ये दे दो, माता जी ये देखो क्या करती है, ठीक है टर्न हो जाओ, इधर इधर बहन जी, माता जी इधर इधर देखो, इधर अब जो करा है वो इनको सिखाओ, ये माइक इधर इधर बहन जी, माता जी इधर इधर, ये मुझे थोड़ा ये दे दो वायर, ठीक है इधर इनको सिखाओ, इधर इधर ठीक है हो गया, ए आप लोग उधर देखना, पीछे नहीं देखना है, हाँ इधर देखो, इधर हो गया, इधर सिखाओ, ये देखो क्या कह रहे हैं, इधर आओ, अच्छा सीख लिया, हाँ इधर आओ, सबको दिखाओ करके क्या सीखा आपने, इधर दिखाओ, तो ये पहुंचा बीच वाली कोई माता, बताओ आपका क्या था, आपका क्या था बताओ, सबको सबको बताओ कैसा था, ठीक है आपका कैसा था, क्या था, ये था फर्स्ट ओरिजिनल जो है वो आ जाओ, ओरिजिनल ओरिजिनल, आप इधर 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 ऊपर आ जाओ, सबको बता दो, ये था, ये पहुंच गया, गड़बड़ हुई क्या, कहां गड़बड़ हुई तो ये तो पूरा ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, सभी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी जो बचे हुए हैं वो आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी 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 फास्ट जल्दी आओ, जो बचे हुए हैं वो आ जाओ, ऐसी लाइन लगानी है जल्दी फास्ट, 5 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए, जिनका हो गया चलो बैठ जाओ, जिनका हो गया बैठ जाओ, कौन बचा हुआ है, भाई लोग किधर है, भाई भी है क्या कोई, सेंटर वाले नहीं है, इधर वाले कौन, जिनका नहीं हुआ है वो आओ, कौन नहीं थे वो आ जाओ, जल्दी आओ, इधर इधर पीछे पीछे आ जाओ माते, हाँ इनके पीछे पीछे, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, लग गए सारे, जिनको नहीं हुआ है वो आ जाओ, चलो जल्दी 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 फास्ट जल्दी टाइम जल्दी आ जाओ, हो गया ठीक है। सब पीछे देखो, उधर देखेंगे, शांत शांत पीछे देखो सभी, पीछे देख लिया, हाँ ठीक है। अब बाकी लोग बैठ जाओ, जो पहले वाले थे वो बैठ जाओ, हो गए सारे ठीक है। थोड़ा आगे आ जाओ और थोड़ा पीछे सर जी, थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, हाँ। तो अभी हम आपको बहुत सिंपल चीज सिखाएंगे, वो ध्यान से सीख लेना है और वही आपको आगे फॉरवर्ड करना है। सब लोग देख लो इधर जो बैठे हैं वो, एक्शन देख लो ओरिजिनल, ठीक है। देख रहे हैं सभी, ये लोग नहीं देखेंगे, बस ये आंख बंद कर लो। सबने देख ली एक्शन, देख ली अच्छे से, देखी इधर वालों ने देखी, करके दिखाओ एक बार। ठीक है ओके डन। माता जी इधर देखो, ठीक है डन। अब इनको सिखाओ, हाँ ठीक है ठीक है इनको सिखाओ, आप नहीं देखना, आप नहीं देखना, हाँ ठीक है डन। इधर सिखाओ इनको, हाँ ठीक है इधर 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 माते इनको सिखाओ, ए आप नहीं देखना है, हो गया हो गया, आपको नहीं देखना है, देखेंगे तो गेम से आउट हो जाएंगे, आपको भी नहीं देखना है, इनको सबको सामने देखना है, हाँ करो। ये तो गरबा चालू हो गया पीछे पीछे हो गया, पीछे देखो, हाँ टर्न माता इधर इधर, अरे इधर इधर इनको सिखाओ, हाँ ठीक है ठीक है इनको सिखाओ इधर ठीक है ठीक है, इधर 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 इनको सिखाओ, बस 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 थोड़ा ज्यादा ही हो गया, इधर आप इधर, ओ माते इधर इधर घूमो, इनको करके बताओ, करो इधर ठीक है ठीक है, इधर इधर इनको सिखाओ, इनको सिखाओ, कैसा था बताओ ये आपने देखना है, बस हो गया हो गया हो गया, इधर इधर टर्न हो जाओ, इनको सिखाओ सिखाओ, अरे ये पुराना वाला याद कर लिया पूरा हो गया हो गया ठीक है नेक्स्ट इधर, हाँ यही है, ए आगे नहीं देख, उधर देखो करो, हो गया ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इधर टर्न, हाँ आपको पीछे देखना है, उधर उधर हो गया पीछे, इधर आओ इन्हें इनको सिखाओ, ओ माते इधर इधर सिखाओ इधर बस 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 इधर इनको सिखाओ इधर इधर इधर, हाँ ये सीखो क्या है ये तो एक से बढ़कर एक निकले इधर आओ, हाँ इधर हो गया आ जाओ, इधर आओ। सबको बताओ क्या था, क्या था आपका, कैसा था, करके दिखाओ। आपका कैसे था, इधर आओ करके बताओ सबको। इधर आपका क्या था, सबको बताओ। आपका क्या था, क्या था, कैसा था, करके बताओ। ओरिजिनल इधर आ जाओ। ये था फाइनल, ये सब लोग देख लो, ये था। मारना दो बार और गाड़ी चलाना, ये था। वो क्या पहुंच गया वहां तक, तो यही हुआ है। तो सभी बैठ जाएंगे। तो दूसरों की जो बातें हमारे जीवन में आती है कानों में, आवाज नहीं करेंगे। दूसरों की जो बातें हम सुनते हैं, सभी शांत 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 शांत। दूसरों की जो बातें हमारे कानों में आती है वो ऐसी ही होती है। ओरिजिनल क्या होती है और क्या बन जाती है, ठीक है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। द्वापर से क्या हुआ, यही होगा। वो द्वापर की शुरुआत, वो द्वापर का एंड। ये शास्त्र क्या थे और क्या बन गए, वो एक्शन ऐसी थी, वहां जाके गरबा बन गया डांस। तो ये ऐसा हो जाता है। इसलिए दूसरों की बातें पर चिंतन, पर दर्शन, निंदा, ग्लानी, ये सब हमको नहीं करना है, क्योंकि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। इसलिए हमें किसी के विषय में कुछ भी पता नहीं है। हम कौन है उनके विषय में कुछ बोलने वाले, बोल सकते हैं। लास्ट में एक मंदिर का पुजारी है, वो सो रहा होता है, ठीक है। तो एक पक्षी का पंख उसके मुंह में आके ऊपर गिरता है, पक्षी का। तो अपने घर पे जाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि मैं जब मंदिर में सो रहा था, पक्षी का पंख मेरे मुंह पर गिरा, पर तुम ये बात किसी को बताना नहीं। परंतु शाम तक उसकी पत्नी के पेट में दर्द होने लगता है, तो वो जाती है पड़ोसी के पास और वो कहती है, मेरा जब पति सो रहा था तो उसके चेहरे पर पक्षी का एक पंख गिरा, पर तुम ये बात किसी को बताना नहीं। तो वो जो पड़ोसी होती है, उसका पति आता है शाम को, वो कहती है, हमारे जो पड़ोसी है ना, वो जब मंदिर में सो रहे थे तो एक पूरा पक्षी उसके मुंह पर आकर गिरा, पर ये बात तुम किसी को बताना नहीं। वो पति जब अपने ऑफिस में जाता है तो अपने दोस्तों से कहता है कि हमारे जो पड़ोसी है, जब सो रहे थे मंदिर में, तो एक पक्षी उनके मुंह में आया और उन्होंने पक्षी को खाया भी थोड़ा सा, पर ये बात तुम किसी को बताना नहीं। वो लोग अपने घर पर जाते हैं, अपनी पत्नियों को बताते हैं कि पड़ोसी जब सो रहा था तो वो मंदिर में बैठ के पक्षी खाता है। फिर और आगे बड़ी बात, और गांव में ये फैल गया है कि हमारे मंदिर का जो पुजारी है, अलग अलग प्रकार के पक्षी खाता है, रोज नए नए पक्षी खाता है। आखिरकार उस पुजारी को उस गांव को छोड़कर जाना पड़ा। अब ये कैसे इस बात को प्रूव करे कि ये गलत है, क्योंकि ये फैल गई। यदि हम किसी की निंदा करने की निमित्त बनते हैं तो इसको क्या कहेंगे, कितना बड़ा पाप है ये, कितना बड़ा बोझ हमारे ऊपर है। इसलिए अगर ये एक पॉइंट इस भट्टी से हम ले जाएं कि मुझे किसी की भी ग्लानी, निंदा नहीं करनी है, तो ये भट्टी सफल, ये जीवन भी सफल। ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि जैसे ही कोई हमारे विषय में कुछ बोलते हैं, हम उसके विषय में कुछ बोलते हैं, होता है ना ऐसा। तो देखा ना क्या हो गया, वहां क्या था और वहां क्या बन गया, कुछ के कुछ हो गया ना आंखों के सामने अभी अभी। तो जो इतने लोगों ने के सुन के बातें हमारे पास आ रही है, उसमें कितना सत्य है, तो वो सब भी क्या है, झूठ। तो हमें पता नहीं है, इसलिए ये काम नहीं करना है। तो इस गेम को कहा जाता है चाइनीज विस्पर। ये अलग अलग तरीके से खेला जाता है, हमने एक सिंपल तरीके से यहाँ खेला, पर उसका सार यही है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। तो लास्ट में हम 2 मिनट योग में बैठेंगे बाबा की याद में। सभी स्थिर, एकाग्र। सोचो बीच में एक अग्नि कुंड है और हम सब इस अग्नि कुंड के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और अपने जीवन की जितनी कमियां, कमजोरियां, परेशानियां, दुख, नकारात्मकता, निगेटिविटी, दर्द, चिंता, भय, सब कुछ क्या करना है, इस यज्ञ कुंड में, अग्नि कुंड में स्वाहा करना है। तो सभी मन से ये अनुभव करेंगे। ओम शांति।